ചക്ഷുരുളിതം തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ വൈശാകൽപ്പതരുഭ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ മഹാവദനായ കൃഷ്ണപ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യനമ്നേ ഗൗരസ്മിതേ ഗുരവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായൈ സദാലയൈ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ സദഭക്തായ നമോ ഭക്തിയാവിഹീനാപരാധലക്ഷ്യൈ ചിത്താസ്തി കാമാദിതരംഗമധ്യേ കൃപാമയീ ത്വാം ശരണം പ്രപന്ന വന്ദേ നമസ്തേ ചരണാം. कल रामनवमी है, हम लोग मथुरा में कम से कम तो 10-15 दिन का प्रोग्राम रखते हैं जिसमें कृष्ण के ही रामलीला का 10-15 दिनों में वाल्मीकि रामायण से हम लोग प्रवचन के रूप में उनकी लीलाओं को श्रवण कराते हैं. मथुरा में हम लोगों का प्रोग्राम तो चल रहा होगा किंतु मैं नहीं पहुंच सका. मेरी इच्छा थी ये कल हम लोग सवेरे से शाम तक के लिए प्रोग्राम रखेंगे, किंतु विशेष आवश्यकता ऐसी हो गई जो शायद नहीं संभव हो सकी. कुछ कारणों से इधर उधर चला जाना होगा. यदि काम से निबट लिया जाएगा तो फिर जहाँ भी रहेंगे 10 बजे भी लौटेंगे 11 बजे, तो 12 बजे रामचंद्र जी का जन्म होता है वो मनाएंगे, और नहीं तो फिर जहाँ भी रहेंगे शाम को उनके संबंध में हम लोग बोलेंगे. किंतु दोपहर में उनका जहाँ भी आप लोग भी या जहाँ भी भक्त लोग हैं अपने अपने घरों में रामचंद्र जी का जन्म उत्सव जरूर मनाएंगे. रामकृष्ण अलग नहीं है, कृष्ण ही की यह रामलीला है, इसी रूप में समझना चाहिए. राम जी अनुग्रह करेंगे तो अपने पूर्ण स्वरूप में कृष्ण में वो भक्ति लगा दें. इसलिए जितने भी हमारे आचार्य लोग हुए हैं सब लोगों ने ऐसा ही किया. हमारे चैतन्य चरितामृत में भी राम की जन्म लीला चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी मना रहे हैं, इसका भी उल्लेख है. विजयादशमी के समय में उनके लीला का अनुकरण कर रहे हैं, उसका भी उल्लेख है. श्रीमद् भागवत में भी रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया गया है. राम के रामायण में भी कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है. किसी न किसी रूप में जरूर रहेगा, वो होगा ही. तो इस तरह से वो कृष्ण की ही लीला है. तो मैं उन्हीं के संबंध में थोड़ा सा कैसी भक्ति है राम का चरित्र पर वर्णन करते हुए हम सब कुछ विशेष व्याख्या करेंगे. किसी भी भगवत अवतार के जगत में आविर्भूत होने का कोई कारण होता है, एक गौण कारण होता है, एक मुख्य कारण होता है. साधारण लोग मुख्य कारण को समझ नहीं पाते, बोले विस्फूर्ण कारणों को ही देते. जैसे कृष्ण लीला में गौ माता बड़ी दुखी होकर के देवताओं की शरण ली, और देवता लेकर के ब्रह्मा के पास में गए. ब्रह्मा जी इन सब को लेकर के फिर समुद्र के तट पर गए, और उन्होंने ध्यान में भगवान की आराधना की. उनकी प्रार्थना सुन करके भगवान जगत में आए पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए. जदा जदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मश्च सदात्मानम सिजाम्यहम्। जब जब पृथ्वी में पाप अत्याचार बढ़ जाते हैं और असल जो धर्म है प्रेम धर्म आत्मा का धर्म वो जब दब जाता है और आखिर लोग खाने पीने और इसी के लिए लड़ाई मार काट करते हैं और आत्मधर्म विस्मित हो जाता है, दब जाता है, उसमें भगवान का अवतार धर्म की रक्षा की, अधार्मिक पुरुषों का विनाश कर और धर्म का अभिष्ठान करने के लिए। तो राम का भी इसी तरह से समझिए, प्रधान कारण क्या है? ये तो गौण कारण हुआ, प्रधान कारण है जी मात्र ही भगवान का नित्य दास है स्वरूप से। स्वरूपतः विश्व में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो स्वरूपतः भगवान का दास हो। जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। क्यों? मुंबई बांस जीवनों के जीवभूता सनातना, ये जीव हमारा ही अंश है। अंश छोटा होने के कारण, परमाणु होने के कारण भगवान तो भूल सकता है। जैसे समुद्र में, समुद्र है विशाल, पानी का था भंडार और स्रोत नहीं है। और एक परमाणु है जल का परमाणु, तो आग परखते ही जल जाएगा परमाणु। और आप कितने भी भयंकर हो और समुद्र का पानी उस पर यदि पूरा है तो सबको बता देगा। कृष्ण पर माया का प्रभाव नहीं होता, किंतु जीव अणु परमाणु है भगवान, किंतु अणु परमाणु हम जिस रूप में कहते हैं उस रूप में नहीं है। जैसे एक कागज को काट दिया टुकड़ा तो उसका टुकड़ा हो गया और कागज अलग से है, ऐसा नहीं। भगवान का ऐसा टुकड़ा नहीं होता। उन्होंने मन ही मन में संकल्प किया और संकल्प करने के साथ ही साथ उनकी शक्ति जो जीव शक्ति है वो जीव के रूप में बदल गई। उनकी चित शक्ति अनंत कोटि ब्रह्मा ये चित जगत के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। उनकी जड़ा शक्ति अनंत कोटि बीच ब्रह्मांड के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। प्रभु जैसे हैं वैसे उनका अंश कोई इस तरह से नहीं हुआ। जैसे किसी गवाक्ष में घर के किसी या होल से
वेंटिलेटर
से सूर्य की किरणें आ रही हैं और उसमें टिक 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 करने वाले बहुत से परमाणु होते हैं, वो देखते हैं होल ऐसा वो किरण आती है। जब से सूर्य तब से वो है, सूर्य से निकलती नहीं है किंतु सूर्य से ही है। सूर्य नहीं रहने से उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए भगवान से कोई जीव पैदा हुआ ऐसा नहीं, भगवान जब से है तब से जीवों का भी अस्तित्व है, किंतु उनका स्वरूप है भगवान का सेवा करना। जब तक वो भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक स्थिर नहीं हो सकते, उनको सुख और शांति नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग जब से हैं तभी से भगवान को भूले हुए हैं, इसलिए भगवान बड़े दुखी होते हैं। हमारा ये जीव स्वतः आनंदमय और हमारा दास कहां हमारी सेवा करके पूर्ण आनंद का उपभोग करता है और हमें ये भूल करके माया में घूम रहा है और जो नहीं है उसको वही मानता है। हमारा जैसा ही कोई आत्मा, कोई आत्मा उसको स्थूल शरीर दे दिया वो स्त्री का, और कोई को दे दिया पुरुष का शरीर, वो परस्पर समझ रहे कि ये मेरी पत्नी है ये मैं उसका पति हूं। सुअरों में भी ऐसे, गधों में भी ऐसे, प्राणियों में भी ऐसे, वृक्षों में भी ऐसे ही, सब जगह इसी प्रकार से चल रहा है। भगवान को छोड़कर के उनका जो प्रेम है सुख है वो तो भूल नहीं सकते, वो इन्हीं चीजों में वो सुख ढूंढते हैं। आज से नहीं, जब से सृष्टि पहली से हुई तब से हम लोग इन रोटेशन घूम रहे हैं। कितने बार देवता हुए, कितने बार ब्रह्मा हो सकेंगे, कितने बार पशु पक्षी की पतंग सुअर गधे घोड़े मनुष्य हो रहे हैं और चल रहे हैं। भगवान सभी मिले नहीं, बहुत से जीव ऐसे हैं सौभाग्यवान मिल गए। हम लोग उनमें से दुर्भागा जीव हैं जो आज तक हम लोगों को कृष्ण से किसी प्रकार का संबंध नहीं हुआ। इस जन्म में थोड़ा सा संबंध होने का चांस वृंदावन के पास ही भारतवर्ष के अंदर में गंगा जमुना के पास में जन्म दिया भगवान ने। अपने परिकर साधु संतों को भी बीच बीच में भगवान भेजते हैं और उनसे भी जब नहीं होता है तो खुद वो उतरते हैं और ऐसी मनोहर करुणाजनक लीलाओं को करते हैं। जो देखा वो तो तरी गया, जो नहीं देखा तरा, उस कथा को जो सुन करके जिनका चित्र थोड़ा सा भी द्रवित हो गया वो पाके जाएंगे। इसलिए ऐसी मनोहारी अद्भुत करुणामयी मधुर लीलाओं को वो प्रकट करते हैं। वो लीला इस जगत की नहीं है, उस लीला को वहीं से उस भूमि के साथ में लेकर के अवतरित होते हैं, इसलिए उसका नाम है अवतार, उतरते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पर लीला नहीं है और नया लीला आरम्भ किया, ऐसी नहीं, जो वहाँ पर लीला है उसी को उतारते हैं। जैसे कोई अभिनय पार्टी बनारस से आई रामलीला का अभिनय करने के लिए, अपनी पूरी पार्टी को वहीं से ले आते हैं और फिर यहीं पर उतारते हैं और पहले से उनकी अब उनका अभ्यास है उस लीला को करने का। उसी प्रकार से ये पूरी पार्टी जो भगवान की उतरती है अपनी पूरी पार्टी के साथ, जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण के परिकर, राम आते हैं अपने परिकरों को लेकर के, बरादेव चैतन्य महाप्रभु अपनी अपनी पूरी पार्टी के साथ में वो लोग उतरते हैं। इसलिए कोटि कोटि जन्मों से, कल्पों से, जन्मों से हमें ये जीव भूल करके दुख पा रहे हैं। हमारे हैं जैसे भी मेरे हैं, जैसे पिता का एक पुत्र बागी हो गया, डकैत बन गया और लोगों को मार काट रहा है और पुलिस के मारे डर से इधर उधर भाग भी रहा है, बड़ा दुख पा रहा है, वन जंगल में घूम रहा है, पिता पर हृदय दुखी हो गया। सोचा कि अच्छी सोहबत सुना करके ये अच्छा हो जाए, फिर हमारे पास में आ जाए, इसके लिए तो हमारे घर में पूरी संपत्ति है, इसी के लिए ही तो उत्तराधिकारी था, अब ये मारा मारा फिर रहा है, इसकी बुद्धि शुभ हो जाए। उसी प्रकार से भगवान जीवों का यह दुर्दशा देख करके अपने परिकरों के साथ में उतरते हैं, ये मूल कारण है। इसके साथ साथ में कुछ गौण कारण भी बन जाते हैं, वही गौण कारण ये पृथ्वी का धूप हर हरण, जगत में धर्म की का प्रचार, ये सब गौण कारण है, इनका मूल कारण वही है। रामचंद्र जी के संबंध में हमने सवेरे या कब बतलाया था ना, जैसे प्रकट है शाम को बतलाया, उसने बतलाया कि किस प्रकार से नर्क को मोह हुआ। उन्होंने सोचा कि हमने कामदेव को परास्त कर दिया, जीत लिया, ब्रह्मा हमारे पिता नहीं जीत सके, हमारे गुरु शंकर जी नहीं जीत सके, शंकर जी अपने क्रोध को नहीं जीत सके और उस कामदेव को जला दिया और ये तपस्या करने बैठे तो देवताओं ने डर करके पूर्वशा मेन से मेनका इत्यादि को भेजा, किंतु ये हट करके बोले ये तुम लोग जाओ, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इनको कोई क्षोभ ही नहीं हुआ, काम का उद्रेक ही नहीं हुआ, इनको अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। शंकर जी से कहा, ब्रह्मा जी से कहा, फिर विष्णु से जा करके बोले आपकी कृपा से मैंने काम को जय कर लिया। ओ, तुमने जय कर लिया, अपमान तो बुरा है, उनको वहां कबीरा कर दिया, साथ साथ में माया से एक पूरी रची और उस माया में राजा को एक लड़की 16-17 वर्ष की परम सुंदरी परम गुणी रूपवती सभी गुण उसकी हस्त रेखाए वैसे ही नारद जी वैकुंठ लोक श्रेणी से उतरे और ठीक उसी जगह में पहुंचे, एकदम नया राज्य, राजा और राजधानी और स्वयंवर इत्यादि सब बचा हुआ। उन्होंने उतर करके राजा को देखा, राजा ने प्रणाम किया कि हमारी लड़की का कल स्वयंवर है, आप जरा उसका हाथ तो देखिए कैसा हाथ है। उस लड़की को देख करके मुग्ध हो गए, हाथ देखा, विश्व ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक बुद्धिमान बलवान होगा, गुणवान होगा, रूपवान होगा, जो अजर अमर है उसे इसकी शादी होगी, जैसे मैं यदि इसे शादी करूं तो मैं ही अजर अमर बन जाऊं, सबसे बुद्धिमान और बलवान बन जाऊं। कल अभी जीत करके माया को आया और आज अभिमान होने से भगवान ने ऐसे ही कहे जैसे हमारी माया को कब से तुम्हारी स्त्री हुई, अभी भी तुम्हारी स्त्री, वो तो आत्मा है, तुमने स्त्री बना दिया, ये तुम्हारा अविवेक है, विधीनता है, अज्ञानता है। ये मेरा बेटा है, ये भी अभिमान, सभी अभिमान के ऊपर में चला। तुम्हें हमारे भक्तों का ऐसा अभिमान हो गया, बस साथ ही साथ में ऑपरेशन करके इसको दूर कर रहा है, साथ ही साथ ये माया की नगरी, माया की पूरी, माया की लड़की, माया का राजा सपना करके एकदम ठीक मनस में हो गया। हाथ देकर के बोली जैसे ये तो मुख में पानी भर रहा है, ये मेरी यदि पत्नी हो जाती तो मैं तो ऐसा ही हो जाता, माया चढ़ गई थी। उन्होंने सोचा कि अब कैसे इस लड़की को हासिल किया जाए, इसलिए वो वहां से उठ करके चले गए दूर में और निश्चिंत स्थान में, निश्चिंत स्थान में प्रभु का स्मरण कर, प्रभु आज तक मैंने आपसे कोई भी आवेदन निवेदन प्रार्थना मैंने नहीं की, प्रभु आज मेरे ऊपर में एक ऐसी भावना आई, आज मेरी इच्छा को पूर्ण कर दो, आप मुझे अत्यंत सुंदर रूप दीजिए, आप हमसे जैसा आप किसी का रूप नहीं वही रूप हमको चाहिए, आज उधार ले रहा हूं कल उसको दे दूंगा जब हमारा काम हो जाएगा। प्रभु प्रकट हुए, मुस्कुरा करके बोले जी क्या बात है, किस लिए हमको मिला है, प्रभु आपको सब अंतर जान ही आप सब जानते हैं, अपना रूप थोड़े समय के लिए हमको दीजिए, क्या बात क्या है, एक बड़ी सुंदर लड़की है उसी से मेरी शादी हो जाती है, मेरी तमन्ना आज तक नहीं हुई थी, आप कृपा करके ये पूरी कर, ठीक है तुम्हारा मंगल होगा ऐसा काम करूंगा, कल्याण हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि दूंगा लूंगा ये कुछ नहीं, तुम्हारा कल्याण नाते से हमारा तो कल्याण इसी में है कि हमको वो लड़की मिल जाए, हम लोग ऐसा ही सोचते हैं, धन पुत्र परिवार राज्य प्रतिष्ठा इत्यादि जानते हैं, नहीं जानते हैं कि ये आप अनर्थ पैदा करेगा, ये प्रतिष्ठा अनर्थ पैदा करेगा, हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए नारद जी ने बड़े खुश हो गए, भगवान से चले गए। अब ये दूसरे दिन राजसभा में पहुंचे जहां पे स्वयंवर हो रहा था, देश देश के वो भी नकली भगवान ने माया से देश विदेश के पर सुंदर से सुंदर नवयुवक राजा राजकुमार वहां पर उपस्थित है, बड़ी भीड़ लग गई और लड़की को सुंदर माला लेकर के और अपने पति को ढूंढने के लिए ये वरमाला बनाएगी उसकी शादी होगी, घूम रहे उसको देकर के जितने लोग थे वो क्षुब्ध हो गए, नारद जी का अब होश नहीं रहा, वो कुत्ते जैसे बन गए, लोग लज्जा भी नहीं रही ये लोग क्या कहेंगे हम ऐसा कर रहे हैं, वो समझा जैसे आज भगवान परम मंगलमय है हमारी इच्छा पूर्ण होगी, उन्होंने अपना रूप दे दिया, वो सामने जाकर के खड़े हो गए, सोचा जी ये वरमाला अब देखते देखते ही हमको पहनाएगी, वो इधर आई तो देखा और देख करके मुख फिरा दिया दूसरी तरफ लेके, अरे भूल गई हमारे तरफ में शायद नहीं देखा हो, उधर से आकर के फिर आई, फिर उधर भी नहीं देखी तो ये और आगे से फिर उधर जिधर जब जाए दरिदर और शंकर जी के दो दूर, वाह वाह क्या कमाल है कितना सुंदर है, आप नारद जी कहते हैं ये सचमुच में ये कह रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा अब यदि वो देख लेगी हमारे तरफ में, एक बार भी देखे तो फिर माला दूसरी जगह नहीं जाएगी, हमारे गले में ही आएगी, बार बार चिंता करके कुछ नहीं, और वो हाथ में माला से चिंतन कर रही है, ब्रह्मा हमारे योग्य नहीं, शंकर जी हमारे योग्य नहीं, इनका वेश वैसा है शंकर का, ये मुंड मालूम मुंड की माला पहनते हैं, सरसों की माला पहनते हैं, जगत का ध्वंस करते हैं, ब्रह्मा से नहीं इंद्र से, वो तो उसमें जितना पाखंड भी भरा पड़ा है, भगवान से कोई संबंध नहीं उसका, और ऐसे करते करते में इतने में गरुड़ पर बैठे हुए शंख चक्र गदा पद्म लिए वही नारद जी के आराध्य जी वहां पर पहुंच गए, और लड़की देख करके बड़ी प्रसन्न हो और उनके गले में माला दे दी, उन्होंने उस लड़के को उठाया और गरुड़ पर बैठा और झट उड़ करके बैठ उठे, नारद जी बड़े चुप हुए बड़े दुखी हुए, देखो तो हमारे सामने में, और मैं कल से कितना आतंक हो रहा हूँ, दुखी हूँ, और हमारे सामने उसी लड़की को लेकर के चले गए। इनको पाठ दूंगा, पढ़ाऊंगा अच्छी तरह, ऊपर इनका कोई नहीं है ना पीछे वाला, इनको कोई शासन करने वाला आज तक नहीं मिला, आज मैं शासन करके इनको दिखा दूंगा कि हाँ मैं कौन हूँ, मैं भी नारद हूँ। जाओ, जिस लड़की को के लिए मैं चुप प्रसार हो रहा था, अभी बड़ा विरह में तप्त हूँ, उसी लड़की के साथ तुम्हारी शादी तुम चले गया, उसी के लिए तुम विरह में तड़फेगा और उसको दूसरे चुरा ले जाएंगे, उस समय बन बन में तू रोएगा। और ये जो शंकर जी के और मेरा जो रूप बंदर गया था, उन्होंने देखा ऐने में या किसी पानी में, ये मेरा रूप हो गया है बंदर जैसे, लंगूर होते हैं काला नाक जैसी, काला मुख, पानी में देखकर के क्षुब्ध हो उठे और हमको ऐसा बंदर का मुख दिया, जाओ यही बंदर तुम्हारी चाहता करेंगे तुम्हारी भार्या मिलने में, और यही अभी चंपा दिया, वही से मैंने भगवान लक्ष्मी जी लेकर के उसी स्त्री को लेकर के उसके सामने माया को हटा दिया। माया हट गई, अरे ये तो हमारे आराध्या देवी, ये तो वो स्त्री दूसरी नहीं, ये तो हमारी आराध्या देवी लक्ष्मी जी है, इन्होंने हमको इस प्रकार से बहका दिया, वो हमको अभिमान हो गया, बिना अभिमान गया था मैं, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने बहुत भूल की, मैंने भूल दी नहीं, हमारी इच्छा थी जगत के जीवों का उद्धार कैसे हो, इसलिए अपनी माया के द्वारा तुम्हारी बुद्धि को मोहित किया अपने भक्तों का, और तुम्हारी बात को सत्य करने के लिए पृथ्वी में जाकर ये सीता जी बनेंगी और मैं राम बनूंगा, और जगत के लिए ऐसी मनोहारी लीला करूंगा जो जगत के लोग देखकर के मुग्ध हो जाएंगे, और भविष्य में भी जब तक ये विश्व की सृष्टि रहेगी तब तक हमारी लीला ये कायम रहेगी, और जो उसे श्रवण करेगा उसे उनका उद्धार होगा। जो कोई मेरी इस लीला को श्रवण करेगा जो राम लीला में हुई, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसका हृदय करुणा रस से भर नहीं जाएगा, जिनके आंखों में एक बूंद भी आंसू आ जाएंगे, जिनका चित्त द्रवित हो गए, सबका कर ये मूल कारण था, मूल कारण क्या, समस्त जीव मात्र को कैसे अपने तरफ में आकर्षित करो, अपने नाम में अपनी कथाओं के चिंतन में इस तरह से भगवान राम के रूप में आए। और भी बहुत से कारण हैं, वाल्मीकि रामायण में और तुलसी कृत रामायण इत्यादि में, अध्यात्म रामायण में ये सब चीजों का वर्णन, राम जगत में पधार, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चार, जैसे हमारे अंश काटनित होते हैं उनका अंश ऐसा नहीं, अपनी इच्छा से ही चार रूपों में ऊपर देखे, बचपन का बीजा तो ऐसे गया, जिस समय में राम अभी लक्ष्मण शत्रुघ्न जी पैदा नहीं हुए थे, उसके पहले महाराज दशरथ जी ने फिर सशास्त्र रानियों के साथ में शादी की, पहले कौशल्या से हुए उनको कोई बच्चा नहीं हुआ, सुमित्रा जी से हुआ कोई बच्चा नहीं, और भी कितने तीन सशास्त्र रानियों के बाद में किसी से जब कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, बड़े दुखी हो गए, अवस्था भी किसी चोरी की हुई, श्वेत और काले कृष्ण दो प्रकार के ये खिचड़ी हो गई, मैंने आई अब प्रौढ़ से अब धीरे धीरे ढलने में, देखा जी अभी तक कोई पुत्र नहीं, इसी समय में हठात उनको कहीं जाना था, वो धीरे 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 चलते चलते काय काय देश में पहुंचे, हिंदू कुश को लांघकर उसी के पास में कोई है, आज वर्तमान नाम उसका क्या है मुझे, पहले तो यह था कल हो गया, वहां पर पहुंचे, वहां पर राजा इनके मित्र थे, राजा ने बड़ी इनकी सेवा की, उन्होंने अपनी कन्या को मैंने कई कई को जो सब गुणों से संपन्न परम सुंदरी थी, अभी शादी नहीं हुई थी, इनकी सेवा में नहीं देखा, महाराज को किसी प्रकार का प्रश्न हो, पानी इत्यादि भोजन इत्यादि सारी व्यवस्था संपर्क निर्भर है, तो उनकी व्यवस्था मैंने देखी, ऐसी सेवा की थी ये प्रसन्न हो गया, और देखने में भी खूबसूरत, उन्होंने चलते समय महाराज से कहा, जी महाराज आप यदि प्रसन्न हो तो आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। अभी कहिए, आपकी लड़की परम सुंदरी है, मैं चाहता हूँ कि आप इसकी शादी कहीं नहीं कहीं करेंगे ही, तो यदि मेरे ही साथ में कर दें तो मेरा ये अनुरोध आपसे, मुझे आपके साथ में शादी नहीं करता। आप राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, किंतु आपके साथ क्यों, मैं इसी सब पर कर सकता हूँ, यदि हमारे हमारी इस लड़की से जो कोई पुत्र पैदा होगा वो राजा होगा। ये भीतर भीतर बड़े प्रसन्न हुए। अभी हमारे 360 रंग है, किसी को भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, यदि इसी बहाने किसी को यदि पुत्र हो जाता है तो हमको यह मांगने में क्या आपत्ति है। उन्होंने कहा, यह बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी लड़की को कोई बेटा हो तो मैं उसी को राज कर दीजिए। ठीक, और साथ ही साथ में वहीं पर शादी हुई, और शादी के बाद में उस लड़की को लेकर के कहते ही तो आए। अब इसके बाद में बहुत दिनों बाद बीत गए, देवताओं के साथ में असुरों का युद्ध हुआ, ये होते ही रहते, अभी भी हो रहे हैं, पहले भी होता है। असुर कौन है? भगवान का जो नहीं मानते हैं, वेदों शास्त्रों को नहीं मानते हैं और अपने भोगों में लगे रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, भगवान जगत के ये विश्व के सृष्टि करने वाले सबके प्रभु के प्रभु हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, उनका भजन करना चाहिए। जो ऐसा जो भजन करते हैं वो तो देवता है, और जो उनको नहीं मानते भगवान को वो असुर है। वो खाने पीने में ये ड्रिंक एंड बी मेरी, बस उनका यही प्रिंसिपल है, खाओ पियो मत, चाहे मांस खाओ, मछली खाओ, गोश्त खाओ, चाहे जो कुछ भी खाना है खाओ पियो, ये सब चीज जगत में बनी है हमारे भोजन के लिए ही। आकाश में जितनी चीजें उड़ने वाली हैं वो सब खाने के लिए, केवल एक पतंग को छोड़कर और इस जगत में और एरोप्लेन को छोड़कर, बाकी सब हमारे खाने को, यदि भी हो भी जाती तो उसको भी खा लेते। और इस पृथ्वी पर जितने भी चारपाए हैं बस एक चारपाई को छोड़कर है, बाकी सब उनके खाने के लिए है। वो ऐसा ही कोई भी चीज नहीं जो खाने के लिए, बहुत से लोग तो नर्वस भी खाने लगते, कितने खाते भी होंगे कौन पता, कभी कभी पेपरों में आ जाता है। ये सब असुर है, देवता को प्रकृति से रह करके भगवान को अर्पण करके उसे जो ग्रहण करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो देवता है। देवताओं ने असुरों में ठन गई, देवताओं ने महाराज दशरथ को बुलाया, ये जाकर के असुरों से लड़े, और उस समय युद्ध में इनका एक रथ का वो जो धुरी होती है खेत को जो धारण करती है वो टूट गई, और ये झट कूद गई कहके भी उनके साथ में थी, बड़ी बहादुर थी, बस उसको अपने हाथों पर उठा लिया और लड़ करके उसमें उन्होंने परास्त कर दिया। तब जब वो काम हो गया तब उसको छोड़ दिया, तो ये बड़े प्रसन्न है। तुम बर मांगो बर मांगो बर मांगो दो बार कहा, जब निकल गया दो बार मैंने दो बर मांगा। उन्होंने कहा, जैसे मैं बर मांगने के लिए नहीं आई, आपकी ये सेवा, सब जब दिन आप जीत पर अड़े हैं तो मैं अपनी धरोहर रख देती हूँ, यदि समय कभी आएगा तो ले लूंगी। ठीक चले आए, बहुत दिन हो गए, इतने में महाराज वशिष्ठ की कृपा से और सिंह ऋषि की कृपा से, या भगवान खुद लीला करना चाहते हैं, उस लीला की दृष्टि से भगवान इनके घर में पैदा हुए। जब ये 14-15-16 वर्ष के हो गए तो विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण जी जनकपुर गए, वहाँ उनकी शादी शादी हुई। शादी होने के बाद में लौटे, चारों भाइयों की शादी वहां पर हुई। जब लौटे अयोध्या में, कुछ दिनों के बाद ही में महाराज मान भक्त के मामा भक्त को ननिहाल ले जाए, भक्त के साथ में शत्रुघ्न की जोड़ी और राम के साथ में लक्ष्मण जी की जोड़ी, ये दोनों लक्ष्मण जी और
रामचंद्र
नहीं शत्रुघ्न जी, ये दोनों सुमित्रा के एक एक के पास में एक एक बड़ी सुंदर जोड़ी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी गोरे, भरत जी और राम जी श्यामले, इसलिए श्यामले के साथ में दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर, श्याम और गौरी, बसेन जी गोरे कृष्ण जी श्यामले, कृष्ण जी श्यामले, राधा जी गोरी, राम श्याम और सीता जी गोरी, ये जोड़ी गई। जब वहां से आए भरत और शत्रुघ्न जी तो मामा के यहां चले गए। इधर में प्रजाओं ने देखा राम बड़े हो गए, अब दशरथ महाराज जी को भी काम देना चाहिए और ये राज्य का संभालने में बहुत चतुर है, बहुत वीर है, बहुत गुणी है, प्रजा वत्सल है, इसमें ऐसा कोई गुण नहीं जो राम में ना हो, तो क्यों ना अब रिटायर्ड हो जाए महाराज और यही राजकाज देखे। सभी व्यक्ति करके महाराज से निवेदन किया, महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, आज हमारा बेटा इतना योग्य हो गया, राज संभालने योग्य हो गया, ठीक है, मैं कभी अपना राज्यभार सब इसको समझा करके युवराज कर दूंगा। जब तक राजा जीवित रहेगा हमारी भारतीय परंपरा में वो तो राजा रहेगा, मरने के बाद में दूसरा कोई राजा होगा, अभी से कुछ नहीं, किंतु अपने जीवित काल में वो किसी को युवराज कर देगा, राजा एकदम रिटायर्ड होकर के बैठा रहेगा और युवराज ही सब काम करेगा। इसलिए तुझे कभी अब देना है वशिष्ठ जी ने, कभी कभी खूब शुभ मुहूर्त है, जिस दिन राम का जन्म हुआ था ठीक उसी लग्न में इसका राज्याभिषेक भी होने को है,
रामनवमी
ये कल जो आ रही है उसी दिन राम का जन्म हुआ, उसी दिन राज्याभिषेक होना था। भगवान को ये मंजूर नहीं, राम को ये मंजूर नहीं, क्यों? मैं जिस काम के लिए आया वो काम नहीं हो सकेगा और नारद जी की बात भी मिथ्या हो जाएगी और भी चीजें कारण है, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना। योग माया उन्होंने भेजा, कह कही के सिर में घूम गई, वो मंथरा जी के पास में बैठ गई। मंथरा ने कहा आज राम की कल में होने वाली है राज्याभिषेक, तू घर में बैठी बैठी क्या कर रही है, तो बड़ी मूर्ख है, रानी से कह रही। वो बड़ी प्रसन्न भई, अपने गले का हार लेकर के मंथरा को दिया, उसने लेकर के फेंक दिया तुझे, अरे मूर्ख तुमको पता नहीं है ये क्या कल होने वाला है, अरे कहां कौशिका राज माता होगी, अब तुम होगी दासी, राम होगा राजा, भरत होगा दास, उसके ऊपर में छत्र और चमर डोलेंगे और तुम्हारा बेटा वही छत्र झुलाएगा, तू दासी बनेगी, राजमाता नहीं, तुमको अकल नहीं है, अभी समय नहीं बिगड़ा है, ये सब क्यों हुआ? कह कही कौशल्या से अपेक्षा राम को प्यार करती थी, कभी बचपन में राम ने राम उनकी गोदी में बैठे थे, बड़ी प्यार कर रही, भैया एक बात हमको देना है तुम्हें, कौन तुम सबको सुनते, जब मेरा राज्य अभिषेक होगा तो तुम ऐसा मांग लेना जैसे कि हमारा राज्य अभिषेक न हो, अरे ये तो नहीं मैं कर सकती, तो भैया हमको तुमने दिया क्या? दो कारण, एक तो राजा की प्रतिज्ञा, हमारे बेटी से ही जो बेटा होगा वही राज पर बैठेगा, अब दूसरा उन्होंने कह दी तो पहले ही बचपन में ही यह वर मांगा था, मैया तुम हमको देना है, हम विशेष कारण से हम आए हैं। अंत में राम के बहुत कहने पर वो मांगे, अच्छा ठीक है ऐसा ही, इसलिए उसने राजा से दो वर मांगे, राजा एकदम सब कुछ तैयारी हो गई, अभी राज्याभिषेक कल होगा, शुभ मुहूर्त में होगा, जब ये सब चीजें तैयार हो रही है इतने में महाराज के पास में पहुंचे गए, याद है तीन प्रतिज्ञाएं
दो
पिताजी के यहां हमसे, मुझे क्या मैं बार मानती हूं, पहले बार में रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए बन जाएं और दूसरे बार में भक्त को राज्य दिया जाए, आखिर भक्त को ही राज्य दिया जाए
पहला
और दूसरे में रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए बनवास दिया जाए, राजा के सिर पर मानो वज्र पड़ा, ऐसा तो क्यों मत कर रहे, बहुत समझाए नहीं मानी, ये किस लिए हुआ? लोग कैकई को देख देते हैं, इसमें कैकई का दोष है या किसका दोष? जो माया जानबूझ करके ऐसी लीला करा रही है, ऐसे ही लीला होती है, जो उसका रहस्य हम लोग नहीं समझ पाते हैं। रहस्य यदि मालूम हो जाता तो नरक की तरफ में हो जाए, रहस्य हम लोगों को पता नहीं है। इसलिए हम लोग कैकई को दोष देते हैं कि कैकई को दोष देते हैं। यदि हमको कोई एक थप्पड़ मारता है तो इसमें दोष किसका है? किसका?
जिसने थप्पड़ खाया,
जो थप्पड़ खाया उसका दोष है। उसने ऐसे कर्म किए हैं जिसका ये उसको फल प्राप्त है, दूसरे जन्म में ऐसा कर्म किया। कोई भी कर्म हम करते हैं उसकी जरूर कुछ रिएक्शन होगा। इसलिए हम जो कि जीवन में पाए हैं सुख या दुख, इसका मूल कारण हम खुद हैं, दूसरा नहीं है। इस चीज को समझने पर कोई क्रोध नहीं होगा, उसका कोई कर्म नहीं होगा, वो भगवान के तरफ में आगे बढ़ जाएगा। माया इस चीज को ढक करके रखती है, कहते ये इसने हमको गाली दी, इसने हमको मारा, इसने हमको अपमान किया, इसके वजह से हमको ये काम नहीं मिला। किंतु ये सब चीजें गलत है, अपना कर्म ही इसके लिए दायी है। हम समझ नहीं पाते हैं माया, भक्त लोग इसको समझ लेते हैं, इसे इसमें कोई भी नानो नचू कहीं नहीं करते, उसको जिस रूप में आता है उस रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। जब शरीर मिला है ये प्रारब्ध का, तो उसमें कर्म में ये लिखा है जैसे तुमको ये दुख होगा या सुख होगा, उसी संसार में सब कुछ मिल रहा है। हंस करके भोगो या रो करके भोगो, तुमको भोग करना पड़ेगा। फिर तो जो भगवान के भक्त हैं वो ऐसे होते हैं, भगवान के नाम के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से कर्मों के फेर को एकदम मिटा देते हैं, इतनी शक्ति है। तो अभी भगवान उनकी सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, साधन को पूरा कराने के लिए उसे जानबूझ करके दुखों का सृजन करता है, जिसे वो दीनहीन बने रहे। द्रौपदी का चिर हरण ये कर्म के लिए नहीं है, प्रारब्ध नहीं, वो तो भगवान ने अभिनय करने के लिए अपने भक्त। प्रहलाद महाराज के ऊपर जो कष्ट हुए उनके पूर्व जन्मों का ये कष्ट का फल नहीं है, वो तो भगवान की लीला पर करें, वो जगत को शिक्षा देने के लिए ऐसा करते हैं। उन्होंने पिताजी से कुछ भी नहीं कहा, पिताजी हमको आप क्यों मार रहे हैं, विष किस लिए दे रहे हैं, आग में किस लिए जला रहे हैं, किस लिए, ये भी नहीं पूछा। हम रहते थे पूछ लेते, और नहीं तो पिताजी को ही दे देते। पिता एक देगा तो हम दो, पिता एक करेंगे तो हम दो करेंगे। आदर्श प्रहलाद महाराज जी का लेना चाहिए, इतना दुख होने पर भी उनसे कुछ भी प्रतिकार नहीं किया। अब चले हम रामलीला में। अब राज्याभिषेक होने को और उसमें विघ्न पड़ गया, पर मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊं, कोई बात नहीं। मैं अपने बाप को लौटा नहीं सकती। अंत में किसी तरह से रामचंद्र जी का वनवास हुआ, ये सब तो आप लोग जानते हैं। वनवास के समय में बहुत कर्म दृश्य उपस्थित हुआ। उस समय में सीता जी को, राम को और लक्ष्मण जी को बन के ये सब कपड़े दिए जा रहे हैं। राम लक्ष्मण को देने के बाद में सीता जी को भी दिया जाने लगा, के कई दे रही अपने हाथों से। बस इसने कहा जी इसके लिए तुमने वरदान मांगा है, इसके लिए वरदान नहीं मांगा, फिर इसको क्यों इस प्रकार का बन का भेज दिया। इसके साथ में हाथी घोड़े महाराज पर है दशरथ, इसके साथ पूरी सेनाएं जाएंगी और समस्त खजाना जाएगा, कोष जाएगा, सभी कुछ इसके साथ। अब तो घबरा गई, राम से बोली जैसे सब तो फिर कैसा होगा, तब ऐसा सुना राज्य में क्यों लूंगा लूंगी। राम कहने नहीं नहीं ये सब कुछ ठीक रहेगा, हम लोग वनवास, सीता जी को भी वनवास, अपने हाथों से लेकर के तीर और वस्त्र उनको पहना। सारे लोग रोने लग गए, सारी अयोध्या उनके पीछे पीछे चल गए। अब इतने में ये तो चले गए और रामचंद्र जी हाराम
दशरथ महाराज
दशरथ हाराम का तीसरी बार हाराम मर गए, चले गए, शरीर को छोड़ दिया। भरत जी को संवाद किया, भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने निहाल से पहुंचे। सारी अयोध्या विधवा हो रही, कहीं कोई उल्लास नहीं, चारों तरफ गंदगी। एक आदमी भी उनके अगवानी के लिए नहीं आया, क्योंकि क्या बात हो गई। देखा जिसे पशु पक्षी भी रो रहे हैं, आदमी भी रो रहे हैं, और सभी इनके तरफ में कुछ क्रोधित होकर के देख रहे हैं। यही कारण है राम का वनवास का, वो तो लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। इसे सोचा जी यही कारण है, इसी के लिए इसको वनवास हुआ राम को, कोई भी नहीं है। मंथरा केवल और उसकी मैया कैकेयी वो अपने भवन में खड़ी थी, उनके साथ कोई नहीं, मैया केवल खड़ी है और मंथरा। अब बड़ी सजग करके मंथरा आज तो सोलह श्रृंगार कर रखी है कुबड़ी, देख करके उन्हें कहा भैया कहाँ गए, बोले पिताजी पिताजी मेरे लिए तो गांव से बाहर अयोध्यापुरी से बाहर आकर के हमारे लिए आगवानी करते थे, अपनी गोदी में ले लेते, बड़े स्नेह करते, आंसू दो बूंदे हमारे सिर पर झुलका देते, आज पिताजी कहाँ गए। तो वो तो मर गए, कैसे मर गए हठात, अब तो मैंने बर मांगा था तेरे लिए बेटा, ये तू राजा बन जा और भक्त राम और को 14 वर्ष के लिए बन जा, तू बड़ी भारी डाइन है, तू मेरी मैया नहीं, मैं आज तुम्हें खत्म कर देता, किंतु इसलिए नहीं मानता कि राम को यदि पता लग जाए कि मैंने किसी की मैया के ऊपर में हाथ उठाया है तो सदा के लिए प्रत्याग कर देंगे, इसलिए तुझे नहीं मानता। तो जाओ आज से तुम्हारा माता और पिता बेटा का रिलेशन सब साथ है, अब कभी भी जीवन में तुम्हें मैया नहीं कहूंगा, अब तुम हमको बेटा मत सकाना, तुम्हारे कहने पर भी हम अब इस रिलेशन को संबंध को सदा के लिए, जाके प्रिय न राम भय दे, जाके प्रिय न राम भय दे, सदैव पिता प्रहलाद विभीषण बंध भर समाचार, बलि गुरु सदैव कंस प्रज बलिषण गय जग मंगल, जाके प्रिय न राम भय दे, सजी कोट बैरी समय जगदप परमशने ही। यदि अत्यंत प्रिय कोई भी व्यक्ति हो जो सीताराम का और राधा कृष्ण का यदि विरोधी है, मैं उसका मुख नहीं देखूं, उसको बैरी के समान कोटी बैरी के समान तत्क्षणात् प्रत्याग कर दो, ये सबके लिए कहा। यदि कोई राधा कृष्ण और आप में सीता में या भगवान में प्रेम चाहता है तो उनकी विरोधी को क्या करना चाहिए, जो उनकी निंदा करता है, जो भजन नहीं करता, ऐसे लोगों को कोट बैरी के समान प्रत्याग करना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता को ही त्याग कर दिया, तजो पिता प्रहलाद भीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को प्रत्याग, और भरत महतारी, भरत जी ने अपनी मैया को, बलि गुरु सजेव बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया, और गोपियों ने अपने कान अपने पति को भी प्रत्याग कर दिया, किसने के लिए है जग मंगलकारी, इसमें मंगल ही मंगल हुआ। इस प्रकार से हम आज तक जितने भी देखते हैं, मीराबाई को भी 500 वर्ष पहले देखिए, उन्होंने अपने पति घर सबको छोड़ दिया, आज जगत में सर्वत्र वो पूज्य है, कृष्ण ही एकमात्र पुत्र है, कृष्ण ही एकमात्र पति है, कृष्ण ही हमारे सर्वस्व है, वही हमारे सखा है, उन्हीं से हमारा रिलेशन है, इसमें जो बाधा आएगा ऐसा कहकर तुमने माता जी को प्रत्याग कर दिया, और बोले जब तक राम को लेकर के नहीं आऊंगा अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगा, पहले पिताजी के लिए श्राद्ध किया, उनके लिए अर्पण किए, और इसके बाद समस्त प्रजाओं को लेकर के महाराज वशिष्ठ से लेकर के जितने गुरुजन हैं, माताएं कौशल्या और सुमित्रा और जितने प्रजाएं थी उनके पीछे से परिचय एक के लिए आदेश नहीं दिया, कौन कैकेयी के लिए, महारानी कैकेयी के लिए, ये कौशल्या के चरण में जाकर के गिर गई और बड़ी हो, हमने बहुत बड़ा भाग्य अन्याय, मैंने सोचा जब हमारा पुत्र इसे प्रसन्न होगा, नहीं हमारी गलती थी, मैं स्वीकार करती हूं, अब तुम हमारी बड़ी बहन हो और बड़े ऊपर मैं करना करूं, मैं भी वक्त के साथ में राम को मनाने के लिए जाना था, और पहले राम को जाकर के कहो कि मैं अपना ये जो वक्त दिया था मैं और आपको बन के लिए भेजा था मैं वापस ले लूं, मैं पहले कहूंगा इसके बाद में वक्त कुछ कहेगा, इसे हो गई सही। उन्होंने कहा ठीक है, किंतु भक्त आदेश नहीं दे रहा, वो हमको मैया नहीं कहता, अच्छा तो मैं आदेश देती हूँ तुम चलो हमारे साथ, उनको भी साथ चले, वो लोग चित्रकूट में पहुंचे, ये भरत जी सोच रहे हैं मैं कैसे क्यों गुरु जी के पास मिले। गुरु जी आपकी बात हमारे भाई साहब नहीं सुख रहा था, आप जब ये आदेश दे दिया तुम राज्य ले लो और भरत तुम्हारा सेवक की भांति रहेगा तो तुम्हारी बात आपकी बात को रख सकते हैं। मैं कैसे कहूं पता क्यों नहीं कह सकते, मैं ये बात कुछ अन्याय कर रहा हूं, ये राज्य तो उन्हीं का है वो बड़े भाई हैं। बात तो तुम ठीक करते हो किंतु राम की भी तो कुछ बात है, उसको भी तो सुनना चाहिए, वो पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए जा रहा है। मैं कैसे कहूं यह अपने पिता की आज्ञा पालन कर लो और मैं तुमको कैसे कहूं इसे मुझको न्यूट्रल करने दो। रात में मैया कौशल्या के पास में गए, बहुत रोने लगे, मैया तू ही मेरी मैया है, कहते ही मेरी मैया नहीं, मैंने तुमको भी अपनी माँ समझा है, राम को अपना बड़ा भाई समझा है। देखो मैंने क्या अन्याय किया, मैंने तो कुछ किया नहीं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि राम को तुम समझा दो ये भक्ति बात मान ले और अयोध्या में लौट आए, उनके बिना अयोध्या शुरू है। सुन करके भी कुछ नहीं बोलता जी, तुम मैया तो बोलती क्यों नहीं, मैं अन्याय कर रहा हूं, नहीं बेटा तुम अन्याय नहीं कर, तो फिर तुम ये बात को राम करते नहीं कर सकती, तुम्हारे आदेश को उल्लंघन नहीं कर सकते। मैंने कहा बेटा मैं कैसे करूं,